السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. ایک اور دن اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت کی صورت میں ہم سب کے پاس ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے بہترین فائدہ اٹھانے والا بنائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم دورہ قرآن 2017 کے 15ویں دن کا آغاز کرتے ہیں, اور آج ہم انشاء اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 30 سے شروع کریں گے. کہانی پیچھے سے ہے. تھوڑا سا پیچھے والی چیز کو ساتھ ملا دوں. حضرت یوسف علیہ السلام مختلف آزمائشوں میں سے گزرتے ہوئے عزیز مصر کے گھر پہنچ چکے ہیں, جہاں ایک عورت نے ان کے خوبصورتی کو, ان کے حسن کو ہی فتنہ سمجھتے ہوئے ان کو ورغلانے کی کوشش کی. اور جن معاشروں میں نفس پہ قابو نہ رہے وہاں ایسے واقعات کوئی بڑی بات نہیں کہ بیوی ہو کسی کی اور نظریں کسی اور کے ساتھ ہو. لوگ اس کو ماڈرنائزیشن کہتے ہیں, حقیقت میں یہ پرانی جہالت ہے. جہاں تک کہانی پہنچی تھی وہ کیا ہے کہ اس عورت نے نہ جانے کتنا صبر کیا ہوگا, لیکن اس کے بعد ایک دن موقع دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنے شروع کیے. عین وقت پہ یوسف علیہ السلام کئی مجبوریوں کا نام لے کر اللہ کے حکم کو توڑ بھی سکتے تھے, لیکن اندر کی برہان کام آئی. اندر کا تقویٰ اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس احساس نے اتنے برے ماحول میں, جبکہ سب سے بڑی بات ہے کہ پہل بھی عورت کر رہی ہے. آپ دیکھیے, غلام ہے, آزاد نہیں ہے. پہل عورت کر رہی ہے, خود نہیں ہے. دیار غیر ہے, جس کو آج آپ کہتے ہیں پردیس میں تھے. کون پوچھتا ہے پردیس میں؟ پھر سب سے بڑی بات ہے, ان میرڈ ہیں, خوبصورت ہیں, تنہا ہیں, اور ان کو کئی عذر لاحق ہو جاتے اگر انہوں نے بہانے بنا کر نیکی سے رکنا چاہا ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کسی کے دل کو ہدایت پہ جمانا ہوتا ہے تو برے سے برے ماحول پہ بھی جماتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عزیز مصر کو ایک شوہر ہونے کے ناطے ایسے وقت پہ بہت سخت ایکشن لینا چاہیے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگ جو جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے, اس میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جو اپنے گھر والوں میں برائی دیکھے اور خاموش رہے. اس کو دیوس کہتے ہیں عربی زبان میں. لیکن وہ معاشرہ جہاں پہ مرد عورتوں کے آگے بے بس دکھے, نام کی وہ بہت ماڈرنائزیشن ہوتی ہے لیکن جہالت ہوتی ہے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ وہ کچھ نہ کر سکا. اگر پیچھے دیکھے تو یعقوب اپنے بیٹوں کے ہاتھوں مجبور دکھتے ہیں, یہاں عزیز مصر اپنی بیوی کے ہاتھوں ہیں. اس نے بات کو جانے دیا, اور باوجود اس کے کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ میری بیوی کا ہی قصور ہے, اس نے یوسف سے کہا بس تو اب خاموش ہو جا. عموماً غلاموں کو, ملازموں کو لوگ اسی طرح چپ کراتے ہیں, لیکن یاد رکھیے یہاں اللہ کی وہ سنت کام آنے لگی. اور وہ کہے کہ اگر تو گھر کے کونے میں بھی چھپ کر برائی کرے, اللہ اس کو بھی دنیا کے آگے نشر کر دے گا. آئیے دیکھتی ہے اب کیسے نشر ہوتا ہے. آیت 30. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال نسوة فی المدینة امراۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه. شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम के पीछे पड़ी हुई है। मोहब्बत ने इसको बेकाबू कर रखा है। हमारे नजदीक तो वो सरी गलती कर रही है। जिस बात का खतरा था वही हुआ। शौहर ने बीवी की बात इस सोच से दबाई होगी कि बात बाहर ना जाए, क्योंकि बड़े घरों के स्कैंडल्स बड़े होते हैं। उसको ख्याल था कि शायद मेरी बीवी की बात अंदर ही रहेगी, लेकिन गुनाह ही क्या जो छुप जाए। वो गुनाह अल्लाह छुपा देता है जिसमें शर्मिंदगी हो, जिसमें आजजी हो। और शहर में बातें होने लगी और उस औरत को उसकी दोस्तें, उसकी सहेलियां किस तरीके से बदनाम कर रही हैं। अब हुआ क्या, बातें बाहर में हुई। अब एक सूरत क्या थी कि ऐसे वक्त में वो औरत शर्मिंदा होती, अल्लाह से मुआफिया मांगती, ऐ मेरे मालिक, तूने मेरे गुनाह को इतना नशर कर दिया, मैं तुझसे तौबा करती हूँ। लेकिन आप देखिए कि उस औरत की होशियारी देखिए, इसने जो उनकी मक्काराना बातें सुनी तो इनको बुलावा भेज दिया और इनके लिए तकियादार मजलिस आरास्ता की और ज़ियाफ़त में हर एक के आगे एक एक छुरी रख दी। फिर ऐन इस वक्त जब वो फल काट काट कर खा रही थी, इसने यूसुफ को इशारा किया कि इनके सामने निकला। जब इन औरतों की निगाह इस पर पड़ी तो वो दंग रह गईं और अपने हाथ काट बैठीं और बेसाख्ता पुकार उठीं, हाशा लिल्ला, जैसे हम कहते हैं ना सुबहान अल्लाह, ऐसे ही। ये इन शख्स इंसान नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। अजीज की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी। बेशक मैंने इसे रिझाने की कोशिश की। देखिए इकरारे जुर्म खुद हो रहा है, और जहां शर्मो हया उठ जाती हैं तो औरतें ऐसी बातों ही करती हुई दिखती हैं। मगर ये बच निकला, अगर ये मेरा कहना न मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत जलीलो ख्वार होगा। यूसुफ ने कहा, मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है बनिस्बत इसके कि मैं वो काम करूं जो ये लोग चाहते हैं मुझसे, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दूर ना किया तो मैं इनके दाम में फंस जाऊंगा और जाहिलों में शामिल हो रहूंगा। इसके रब ने इसकी दुआ कबूल की और इन औरतों की चालें इसे दूर कर दी। बेशक वही है जो सबकी सुनता और सब कुछ जानता है। फिर इन लोगों को यह सूझी कि एक मुद्दत के लिए इसे कैद कर दें, हालांकि वो इसकी पाक दामनी और खुद अपनी औरतों के बुरे अतवार की सरीख निशानियां देख चुके थे। यहाँ पे अब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और दौर है। देखिएगा जरा यहाँ मोहब्बतों की आजमाइश। देखने में इस औरत की ये मोहब्बत थी, लेकिन ये लस्ट थी। और याद रखिए, नफ्स की इश्तहा पर मबनी मोहब्बतें इसी किस्म की होती हैं। एक तरफ उस पर डोरे डालती है, दूसरी तरफ शौहर को देखकर उसके खिलाफ बातें करती है। बहुत सारे लोगों को मोहब्बत और लस्ट का फर्क नहीं समझ आता। और यहाँ ये भी बता दिया कि गुनाह करके उस पर शर्मिंदा ना होना और अपने गुनाह को और नुमायाँ करना और इसको और लोगों को खोल के दिखाना, ये कोई आज की बात नहीं कि लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करके रात को तन्हाई में और महफिलों में किए हुए गुनाहों को सारी दुनिया को दिखाने लगते हैं। ये पुरानी जहालत है। दूसरी बात, यहाँ देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस चीज़ ने रोका। ये चीज़ आपने, मैंने आज अपने बच्चों में और अपने मर्दों में और अपनी बच्चियों में और अपने अंदर डालनी है। और वो क्या है कि जब एक इंसान अपनी फितरी हया पर होता है तो उसको कभी भी ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती। आज के दौर में कह लीजिए या आज की ज़ुबान में कहिए कि ये तो ग्लैमरस लाइफ थी। आज जिस चीज़ को बहुत खूबसूरत बनाकर लोगों को बाहर के मुल्कों के ख्वाब दिखाए जाते हैं, ऐसे लगता है जहाज से उतरती हूरें परियां खड़ी होंगी और इनको अपने दाम में उलझा देंगी। कभी आप सोचिए, आज तो मैं और आप वेस्ट में बैठे हुए हैं ना, हमें वो बातें अब भूल गई होंगी, लेकिन मैं आज भी उन चीज़ों को याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हम अपने मुल्कों में रहने वाले बाहर के लोगों, बाहर की जिंदगी को कितना ग्लैमराइज करते हैं। कभी आप सोचिए, जिन मुल्कों में आज मैं और आप बैठे हैं, बचपन से हमने इन मुल्कों का क्या नाम सुना, हमने फिल्मों और गानों और डायलॉग्स में और किन किन चीज़ों में इसको रखा। और किसी ने बात की, मुझे अच्छी लगी कि ये बात यहाँ से बाहर के मुल्कों से पाकिस्तान में जाने वालों का भी कसूर है। इतना ग्लैमराइज करके बाहर की दुनिया को दिखाते हैं, हर बंदा एड़ियाँ उछाल के आने को तैयार हो जाता है। आना जाना कोई बुरी बात नहीं, हर मुल्क अल्लाह का है, दुनिया अल्लाह की, लेकिन जो देखने की बात है कि ऐसे मुल्कों में लाकर बास दफ़ा इंसान के ईमान की आजमाइश होती है। बाज़ दफ़ा जवान लड़के जॉब्स के नाते से और काम कारोबार के नाते से ऐसे मुल्कों में बिल्कुल छोटी उम्र में लाए जाते हैं। और किसी का जुमला जो कड़वा बहुत है, उन्होंने कहा कि कोई ही बचता होगा जो इस माशरे के रंग में न रंगा जाए। यहाँ आकर फिर वो एक मजबूरी के नाम पे दूसरी मजबूरी को ले आते हैं। आपका मेरा फ़र्ज़ क्या है, बचपन से ही जवान होते बच्चों के दिलों में ये बुरहान डाल दें। आप देखिए कि यूसुफ ने कैद को कबूल कर लिया। लोग जिसको ग्लैमर कहते हैं, यूसुफ के लिए वो चीज़ बुरी थी और कैद उससे बेहतर थी। पहले माँ बाप से कटे, माँ बाप ने बचपन में एक दीनी माहौल दे दिया, फिर मिस्र में आए, दुनियावी तालीम हासिल की, अब अल्लाह यहाँ से काट कर जेल में ले जाना चाहता है। ये असल में हो क्या रहा है यूसुफ के साथ? ये यूसुफ के तरक्की के रास्ते की सीढ़ियाँ हैं। लिखिएगा, अक्सर आजमाइशें हमारी कामयाबियों की सीढ़ियाँ होती हैं, ये जीने हैं। अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत आगे ले जाना चाहते थे, सबसे काट कर अल्लाह ने इनको अपना बना दिया। बिल्कुल जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरा में जाकर तन्हाई में बैठा करते थे, फिर इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक की बात आई। तन्हाई भी इंसान की रूह की ग़िज़ा होती है। कहते ना, कह दिल कभी से तन्हा भी छोड़ दे, अपना आप खुलने लगता है। और जब लोग होते हैं ना, तो हम लोगों के मुताबिक रिएक्ट कर रहे होते हैं, कोई अच्छा करे हम अच्छा करते हैं, कोई बुरा करे हम बुरा करते हैं, लेकिन तन्हाई में गौर व फिक्र का मौका मिलता है, हिकमत आती है, लोगों के रवैये समझ में आते हैं, बुरे वक्त में एक एक शख्स पहचाना जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला इन मुख्तलिफ हालात से गुजार कर असल में लोगों की नफ्सियात समझा रहे हैं, कैसे लोगों से सेना है। और दूसरी बात यह है कि वो लोग जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए आपके इर्द गिर्द जमा होते हैं, वो छटने लगते हैं मुश्किल हालात में। चापलूसी और इस तरह की चीज़ें उनको सूझती ही कब है, जब उनको आपसे कोई और मसला होता है। फिर इसमें एक और चीज़ भी देखिए, और वो क्या है कि अजीज़े मिस्र अपनी बीवी को ही कह देता कि तुम कहीं चली जाओ, खुद उसको लेकर किसी दूसरे मुल्क चला जाता, और कुछ नहीं तो यूसुफ को ही उस मुल्क से निकाल देता। लेकिन चूंकि उसने बीवी की बुराई को इतनी बड़ी बात नहीं समझा, बल्कि अगर आप कुरान के टेक्स्ट को देखें ना, तो बीवी की बदकारी पे उसको इतना गुस्सा नहीं आ रहा जितना उसको झूठ बोलने पे गुस्सा आ रहा है। ना गुस्सा आया, ना हैरत हुई, ना डांटा, ना कुछ किया, और बस कह दिया, यूसुफ तू जरा आराम से बैठ जा, इसको छोड़ दे। तो याद रखिए कि बाज दफा बड़े घरानों की खवातीन और मर्द इसी किस्म के कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि ये खवातीन का जो किरदार है, ये आज के दौर की मॉडर्न महफिलें, हर महफिल ऐसी नहीं, लेकिन आज नाम सुनने में कई आते हैं, कहीं कॉफी पार्टीज हैं तो कहीं किटी पार्टीज हैं, वहां की खवातीन का अमूमन टॉपिक और मौजूद सुखन क्या होता है? फैशन, कपड़े, खाना पीना और लस्ट और ग्लैमर। मैंने अपने गुनाहगार कानों से लोगों को ऐसी वल्गर बातें करते सुना है कि मैं हैरान रह जाती हूँ कि जब कुरान जिंदगी में नहीं होता तो औरतें इतनी पर्सनल बातें ऐसे खुली महफिलों में बैठ के करती हैं, कभी इशारों में, किनायों में, आंखें मारते हुए, कभी कुछ करे। तो याद रखिए, इस एक वाक्य में बहुत सारे सबक है, और इससे ये भी पता चलता है कि वो औरत बदनाम भी हुई और नाकाम भी हुई। वो कहते हैं ना खुदा मिला ना विसाले सनम, मिला क्या उसको। फिर एक और चीज़ देखिए कि उसकी ये चाल कि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूब संवार सजा कर औरतों के हाथ में छुड़ियां पकड़ा कर बाहर आने का मौका दिया, क्योंकि वो लोगों को दिखाना चाहती थी कि तुम तो आज इतनी औरतों के बीच में इसके हुस्न को देख रही हो, मैं तो तन्हा भी रहती थी। तो आज भी ऐसे ही ये चीज़ें, अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह ताला माफ़ करे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस किरदार पर वो हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि 7 लोग अर्शे इलाही के साए में होंगे, और उसमें से एक वो जिसको किसी पैसे वाली औरत ने या नसब वाली औरत ने बुराई की दावत दी और वो उसकी बात पे पीछे हो गया और कहा कि मुझे अल्लाह से डर लगता है। और ऐसी महफिलों और ऐसे मुआशरों में रहना, याद रखिए, मर्दों के लिए फितना है। आज आप कहते तो हैं, लेकिन मैं सच कहूं, अगर शादीशुदा मर्द अगर कोई है, बीवी साथ है, तो फिर ऐसी जगहों पे जहां नफ्स की रग़बत दिलाने वाली चीज़ें हों, उनका आना भी बहुत खतरों का है। लेकिन कभी किसी तनहा बच्चे को, बेटे को, किसी पढ़ाई के नाम पे, किसी जॉब के नाम पे पूरी कोशिश कीजिए कि तनहा ना छोड़े। और आप सबको भी कहूंगी, 16-17 साल की उम्र का लड़का आज जहाँ जवान होता है, शादी के काबिल है, आप उनकी शादियां कीजिए, जाइए, वो भी पढ़ें, उनकी बीवियां पढ़ें, कमाएं खाएं जो मर्जी करें। जिस सोसाइटी में चारों तरफ लव, रोमांस और ये गंदगी हो, कोई नजर पाक नहीं, कोई कान पाक नहीं है, कोई सोच पाक नहीं है, वहां 25-30 साल तक अपने बच्चों का अनमेरिड छोड़ दें, सिर्फ इसलिए कि अभी पढ़ रहे हैं, अभी अपने पाँव पे खड़े हो रहे हैं, अभी इनको कमाना है, अभी इनका स्टैंडर्ड बनना है, आपको क्या पता कितनी इज्जतें दागदार हो सकती हैं। तो जो चीज कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि जब खुशबुओं में बसी हुई औरतें चारों तरफ हों, जब इस किस्म के माहौल हों कि जहां आम मर्द तो आम मर्द, खास मर्द जिनके दिलों में ईमान होता है, वो भी फितने में पड़ जाएं, तो क्या उस वक्त फिर हम अपने बच्चों को भी परेशान करेंगे? ना बेटियों को बिलावजह तनख्वाह छोड़िए, ना बेटों को छोड़िए, اور ان ساری عورتوں پہ وہ صحیح مسلم کی روایت بھی یاد آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے آج نہیں دیکھا، یعنی میرے دور میں نہیں ہیں، بعد میں آئیں گی، ایک تو ظالم حکمران تھے اور دوسری فرمایا وہ عورتیں جو مائلات، جو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں، ممیلات، مائل ہونے والی ہیں، دل پھینکنے والی ہیں، اور ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، یعنی سروں کے اوپر یہاں ہمپ بنا کے اپنے آپ کو اونچا کریں گی. نساؤن آریات قاسیاتن آریاتن ممیلاتن مائلاتن روس و ہننا. اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی ان کی صفات بیان کی کہ ایسی عورتیں جو ہیں وہ جب تمہیں دنیا میں دکھیں تو سمجھ لو کہ اب قیامت آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو حیا دی، حجاب اور نقاب اور ساتر کپڑے پہننے کی دعوت دی، اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ لا تکون فتنہ. آج عورت نے خود کو برہنہ کر کر، اپنے کپڑوں کو ہلکا کر کر ساری دنیا کے مردوں کو پریشان کر دیا. اللہ نے ہمیں ایک بڑا خوبصورت نظام دیا ہوا ہے، سٹل ہے، صرف اس کو اپنانے کی دیر ہے. آج اگر ہم جن دنیا کے حصوں میں رہتے ہیں صرف اپنے کردار اور اپنے وجود سے اپنے آپ کو پیش کر لیں، آپ دیکھیے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے ضرور اس کو اپنائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس کانفیڈنس کو ڈیولپ کریں. آپ دیکھیے جب ایک رواج سے نیا رواج بدلتا ہے، لمبی سے چھوٹی قمیض ہوتی ہے، کتنا کانفیڈنس ہے اس عورت کا جو پہلے دن چھوٹی قمیض پہن کر آتی ہے. اس کو یہ خوف نہیں آتا کہ لوگ مجھے پینڈو کہیں گے، مجھے گھٹیا کہیں گے. اس کو پتا ہے کہ میرے پاس ایک سٹائل ہے، اس کو پتا ہے ایک ٹرینڈ سیٹر ہوں میں ایک ماڈل ہوں، میں ایک کسی کے کاروبار کو چمکانے والی عورت ہوں. اگر یہ کانفیڈنس آج کی اس عورت کو، ہم مسلمان عورتوں کو آ جائے کہ میں نے گندے کپڑے نہیں پہننے، میں نے ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے. آپ کو کوئی مجبور تو نہیں کرتا کہ آپ ٹائٹ کپڑے پہنیں، کوئی آپ کو اس پہ تو مجبور نہیں کرتا کہ آپ کا جسم جھلک رہا ہو. صرف چند مجبوریوں کا نام لے کر ہم ان کو تو بدنام کریں، لیکن جس چیزوں پہ کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، وہ ہم کر کے اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں. اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا کہ ینگ بچیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، جن کو ماں باپ کی پروٹیکشن دی، پھر ان کی نظریں پاک ہونی چاہیے. آج ایسے ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں، آئی ایم کریزی، آئی ایم ڈائنگ فار. میں نے خود اپنے کانوں سے ایک بچی کا، ایک لڑکے کے بارے میں جملہ سنا، آئی ایم ڈائنگ فار ہم، میں مر رہی ہوں اس کے لیے. اللہ کہتے کل ان صلاتی و نسکی، تم نے مرنا ہے، جینا ہے تو اللہ کے لیے مرو. اب یہ بات، کرکٹروں کی تصویریں، پوسٹرز ہیں ان کی، فائل کور پہ دیکھیے آپ ان کی، ٹیلی فون کے کورز پہ ایسی گندی چیزیں دیکھیں تو کیا ماں باپ کو فکر نہیں ہوتی؟ یہ کیسی جوانی آ گئی ہمارے جوانوں پہ؟ ہمیشہ سے لوگ جوان رہے، آج ہم کہتے ہیں یہ بچی ہے جوان ہوگی، نہیں، یہ بات نہیں مانتی، نہیں پھر اس کی دوستیں ہیں، پھر ایسی ہیں ویسی ہیں. تو اس کے اوپر ہم ماں باپ کو ذرا سا نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کے ذہن بنائیے، جاہلیت اولا ہے، اللہ نے اس کو پرانی جاہلیت کہا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اس سے آزاد کیا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ یوسف والیوں نے تو یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر وہ آپ کو دیکھتی تو وہ تو اپنے دل کاٹ لیتی. یعنی حضرت عائشہ نے آپ کی تعریف کیسے کی کہ آپ تو یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت تھے، آپ تو ہینڈسم تھے. جب ایک مرد کو اپنی بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے محبت نہیں ملتی تو بعض دفعہ اس قسم کے سانحے وہاں بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بچا کر رکھے. اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تیسرا دور ہے. پہلا، باپ کی گود سے کنویں تک. دوسرا، کنویں سے نکال کر عزیز مصر کے گھر کے آرام اور سکون کے ساتھ. اور اب یہاں سے آپ کو ایک تیسرا ہی خوبصورت کردار دکھے گا، جیل کی تنہائیاں. اس کو کہتے ہیں کہ تقدیر غالب آتی ہے، تل کلے یا منودا ولوہا بین الناس. اور یہاں سے اب آپ نے یوسف کا جو کردار نوٹ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ان لنراک من المحسنین، ہم تجھے محسن دیکھتے ہیں. ہر میدان میں لوگ یوسف کی تعریف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر آپ محسنہ ہوں گی تو آپ برے سے برے ماحول میں بھی اپنا پنوائیں گی. آئیے تھوڑا سا ان آیتوں کو پڑھ کر پھر اس پہ بات کرتے ہیں. آیت نمبر 36، وَدَخَلَ مَعَهُ سِجْنَ فَتَيَانِ، قید خانے میں دو غلام اور بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. یوسف نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے. اس کو ہائی لائٹ کیجئے، یہ ہے اصل میں عاجزی، یہ ہے محسن ہونا. مما علمنی ربی، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں جا چکے ہیں. بظاہر دیکھا جائے تو لوگ جیل میں بدنام بھی ہوتے ہیں اور برے بھی بنتے ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کو وہاں اللہ تعالیٰ نے कुछ ऐसी प्यारी इज्जत दी कि लोग उनके खूबसूरत हुस्न के साथ मुतासिर भी हुए और साथ ही साथ उनका किरदार बहुत अच्छा था। यूसुफ अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने ख्वाबों की ताबीर का भी एक अजीब सा मलका दिया था, इसी का यहाँ तذکرہ होता है। लेकिन इस दौलत को पाकर कोई फख्र नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, कोई बड़ाई नहीं, बहुत नेक है, बहुत पढ़ाए हुए हैं जी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, मिम्मल्लमनी रब्बी, मेरे रब ने मुझे सिखा दिया। और यही है खूबसूरत बात, जब कभी कोई इल्म मिले उसको अल्लाह से जोड़ दीजिए। आप देखिए, हम लोगों की बातें करते रहते हैं, लोगों के गुण गाते रहते हैं, जबकि दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो तो अल्लाह से जोड़ना है। ना खुद बड़े बने, ना कहा मैं हूं ही आलिम, मैं हूं ही बड़ा अक्लमंद, मैंने बहुत पढ़ा, ये नहीं, ना अपने दुख सुख सुनाए। देखिए जेल में किसी को कानो कान खबर नहीं कि यूसुफ यहाँ कैसे पहुंच गए, बल्कि बात करते हैं तो क्या करते हैं, फरमाई नी तरकतु मिल्लत कौमिल्ला युमिनून बिल्ला। ये लूम क्यों मिले मुझको, किस तोहफे में मिले? वाकया ये है कि मैंने इन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखरत का इनकार करते हैं, अपने बुजुर्गों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का तरीका इख्तियार किया है। इसको हाईलाइट करें, ये तोहफा होता है, इल्म एक तोहफा है, हिकमत एक तोहफा है, मुहसिन होना एक तोहफा है, मिलता कब है, जब अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते हैं। और सबसे छोटी चीज जो छोड़नी है वो अपनी अना छोड़नी है, खुद पसंदी को छोड़ना है, बड़ाई के एहसास को छोड़ना है, मैं कुछ भी नहीं हूँ ये एहसास पैदा करना है, और हर उस चीज़ को छोड़ते जाना है जो गुनाह की तरफ ले आए। यूसुफ को ये थाली में रख कर नहीं मिला, यूसुफ ने किसी मौके पे अगर हालात से समझौता ही कर लिया होता, मैं मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरियाँ तुम्हें क्या पता, मेरे हालात तुम्हें क्या पता, मेरे दुख सुख का तुम क्या जानो, याद रखे मिम्मल्लमनी रब्बी नहीं होना था। या एक बात याद रखिएगा, अल्लाह आम इल्म हर एक को सिखाता है, किताबें पढ़ के बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन एक खास इल्म होता है अल्लाह के फैसलों की हिकमत समझना, लोगों के चेहरों से उसके अंदर का हाल समझ जाना, उसकी बात के अंदाज से, उसके चलने के अंदाज से, उसके उठने के अंदाज से, उसके बॉडी एक्शन से पता लग जाए कि इसके अंदर क्या है। ये तब मिलता है जब बंदा अल्लाह के फैसलों पर राजी होता है। और जिंदगी में अगर किसी ने ये दौलत पा ली, उसके बाद दुनिया का हर मैदान उसका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किसी मौके पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आज हम कहते हैं हमें हिकमतें वो सारी मिलें, हमें दौलतें वो सारी मिलें, रहमतें वो सारी मिलें, लेकिन हैं हम बड़े मजबूर, हैं हम बड़े मुश्किल में। आज का दौर, आज के हालात, ये मुल्क, वो मुल्क, फलां दुनिया, हम तो अपने से 20-20 साल छोटे बच्चों के हाथों मजबूर हैं। हम तो छोटे बच्चों से भी डरते थे, पर अब बच्चे बड़े हुए तो हम तो उनसे और डरने लग गए। हम तो छोटों को भी खुश करते थे, अब तो हम बड़ों को भी खुश करने लगे। तो याद रखिए, इतनी डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी को ये इल्म नहीं मिलता। इसके लिए अंदर को खालिस करें, साफ करें, पाक करें, बर्तन साफ होगा उसमें जो डलेगा चमकेगा। हमें कुछ मिल भी जाए वो अंदर की पोल्यूशन के साथ गंदा होने लगता है। फिर उसके बाद का हमारा ये काम नहीं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराए। हम होते तो वहां बैठ के अपने दुख सुनाते, आओ मैं सुनाऊं मेरे साथ क्या किया, मेरे भाइयों को देखो खुदा का खौफ ही नहीं है, अल्लाह उनको बख्शे। फिर उसके बाद अजीज़े मिस्र की बीवी के रोने रोते, फिर उसके बाद हम उनके औरतों के जो डोरे थे उनकी बातें करते, कुछ नहीं कहा। ईमान वाला अपने दुख नहीं बयान करता, किसी को कानो कान खबर नहीं होती इसकी जिंदगी में कोई दुख भी आया, इसको कोई परेशानी भी आई, है ही कोई नहीं, दुख ही कोई नहीं, परेशानी कोई नहीं, क्योंकि गम एक है कि इंसानियत को अल्लाह से जोड़ना है। अब यहाँ देखिए, इतने प्यारे नुक्ते हैं, जब भी मैंने इसको तफसील से पढ़ाया, नबी सल्लम और हजरत यूसुफ का तरीका तबलीग ऐसे टैली करके दिखाया कि देखिए वो कहाँ बात कर रहे हैं, ये कहाँ कर रहे हैं। जेल में बैठा एक शख्स दीन का काम कर रहा है, हम आजाद बैठे लोग परेशान नहीं होते, हम लोगों के शिर्क पे कुड़ते नहीं, हम उनकी बेदीनी पे नहीं कुड़ते। वजह क्या है? हमारे अपने दिल में भी सच्चाई नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह की मोहब्बत सिखा रहे हैं, कैसे? दर हकीकत ये अल्लाह का फजल है हम पर और तमाम इंसानों पर कि इसने अपने सिवा किसी का बंदा नहीं बनाया। जरा से इस पे गौर करें, रूह कांप जाती है ये सोच के कि अगर हम अल्लाह के बंदे नहीं किसी और के होते। नहीं समझ आई? जिस औरत को अपने शौहर से प्यार है ना, वो एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोच सकती कि मैं इसकी बीवी ना होती किसी और की होती। और जिसको अपने बच्चे से प्यार है, वो एक सेकंड के लिए नहीं सोच सकती कि ये मेरा बच्चा मेरा नहीं किसी और का बच्चा होता। अब इन सब को सोचिए, हमारा रब अल्लाह ना होता, कोई और होता तो क्या बनता? क्या इस दर्जे की मार्फत है? एक बुजुर्ग ने कहा कि क्यामत के दिन अगर मुझे चॉइस दी जाए कि तुम्हारा हिसाब किताब अल्लाह करे या तुम्हारे माँ बाप करें, तो वल्ला ही मैं अल्लाह को कबूल करूंगा, मैं अपने माँ बाप को नहीं लूंगा। ये चाहिए प्यार, ये तौहीद, ये दौलत है आपकी मेरी। ये उम्मत मुस्लिमा के जवाल से निकलने के रास्ते हैं कि इब्राहिम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुशी महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह तू मेरा रब है, मैं तेरे साथ ही खुश हूँ। देखिए दुनिया में जो मासियाँ होती हैं ना, जिस घर जाती हैं उसके गुण गाती हैं, एक से उठी दूसरे, दूसरे के घर की उसकी बुराइयाँ, तीसरे के घर की उसकी बुराइयाँ, वो किसी की मुखलस नहीं होती। और जहाँ चार पैसे ज़्यादा मिले, ज़रा सी मुराद मिली, इसको छोड़ के उधर जाती हैं। अल्लाह का बंदा कभी अल्लाह को छोड़ के नहीं जाता। अल्लाह ताला हमें अपना बंदा बना ले। लेकिन बात क्या है, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ कैद के साथियों, तुम खुद ही सोचो कि बहुत से मुतफरिक रब बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। इसको कहते हैं सोल सर्चिंग क्वेश्चन, थॉट प्रवोकिंग, सोच उभारने वाला, रूह के अंदर एकदम झटका लग जाए कि वाकई एक रब बेहतर है कि ज्यादा बेहतर है। इसको छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो, इसके सिवा कुछ नहीं, बस चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे आबाओ अजदाद ने रख लिए। अल्लाह ने इनके लिए कुछ सनत नाजिल नहीं की। फरमा रवाई का इकतदार अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं। इसका हुक्म है कि खुद इसके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो। कहिए या कनाबुदू, ए अल्लाह हम सिर्फ तेरे बंदे हैं। ये तरीका अल्लाह ने वहां भी सिखा दिया, यही तरीका हम सबको भी सिखा दिया, यही ठीक सीधा तरीका जिंदगी है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, इल्म की कमी। आप देखिए नपे तुले अंदाज में, मुख्तसर अंदाज में इतनी प्यारी तबलीग कर दी, और कब की, जब उनको यूसुफ की जरूरत पेश आई। या फिर एक नुक्ता नोट कीजिएगा, यूसुफ कब से थे जेल में, कुछ नहीं बोले, या बोले होंगे तो इतना नहीं बोले। आज उनको जरूरत पड़ी कि इस ख्वाब की ताबीर तो बताओ, जरूरत आई ना, यूसुफ उनकी जरूरत बन गए, तो उन कैदियों ने उनकी ये तबलीग भी सुन ली। बड़े शौर से जुमला बोल रही हूँ, मुश्किल है लेकिन समझिएगा। आज का मुस्लिम दुनिया को ये साबित कर दे कि हम तुम्हारी जरूरत है, तो दुनिया आपकी दीन की बात भी सुनेगी, दुनिया की भी सुनेगी। नहीं समझे, बच्चों ने जब तक माँ बाप से लेना होता है ना, पॉकेट मनी और खाना पानी उनकी सुनते हैं। जिस दिन खुद चार पैसे जेब में आ गए, अब माँ कौन और अब्बा कौन, फिर कौन पूछे कहाँ से आए और कब गए, क्योंकि अब जरूरत नहीं रही। जब तक मुसलमान इस दुनिया में उरूज पर थे, जब इन्वेंशंस दुनिया में मुसलमानों से हो रही थी, जब दुनिया में मुसलमान सब कुछ कर रहे थे, तो आपको पता है कि वेस्टर्न कल्चर मुसलमानों के ताबे था। ये इनकी शहजादियां सरों पे वेल डाल के बड़े बड़े शेफरॉन पहनकर निकलती थी। किससे सीखा, इनके मर्द, इनके शहजादे जब अरब मुल्कों में जाते थे, वहां बड़ी बड़ी थोब और जो मर्दों के पहनने के कपड़े वो खरीद कर लाते थे। हमारी बड़ी बड़ी वो जिसको कहना चाहिए कि कैलीग्राफी के जो खूबसूरत नमूने होते थे, उनको लाकर अपने दीवारों पे बार दफा उल्टे लटकाए हुए देखे कि उनको पता ही नहीं ये है क्या। उस वक्त मुस्लिम कल्चर वेस्ट के दिमाग पे छाया हुआ था, क्योंकि हम लोगों की जरूरत है। जब से हम खुद जरूरतमंद हो गए, आ रही अगली सूरत आप पढ़ के तो देखिए, रोने वाली आयतें आज के बारे में। लेकिन हम सो रहे हैं, कोई हमारा सोना तो देखे और कोई हमारी कोई गफलतों को तो देखे, और हम मजे में बैठे, हमें जरा सा दीन समझ आता है ना तो 5 से 6 नमाजें शुरू हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा और समझ आता है ना तो 7 नमाजें हो जाती हैं। पहले 5 पढ़ते थे, फिर तहज्जुद शुरू की, फिर 4 की। नमाजें तो अल्लाह के हुक्म से पढ़ती हैं, पर हम में से बहुत थोड़े लोग इस बात को समझ पाते हैं कि वो मुस्लिम इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। जिससे कोई खाता है उसी की मानता है। चूंकि आज हम दुनिया को ना फोन दे रहे, ना सेलफोन दे रहे, ना गाड़ियां दे रहे, ना हम किसी नासा में जाकर कुछ रिसर्च कर रहे, हम सोए बैठे कपड़े जूते बना लेते हैं, अपनी औरतों को पहना लेते हैं। हमने दुनिया को आज क्या दिया, तो यूसुफ की जरूरत थी तो उनको सुनना पड़ा। अल्लाह करे आज के मुसलमान को ये बात समझ आ जाए।